नमस्कार, दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्रेटर नोएडा में सेमिकॉन इंडिया 2024 का उद्घाटन किया। कहा, भारत सेमीकंडक्टर पावरहाउस बनने के लिए हर कदम उठाएगा। प्रधानमंत्री ने हरित हाइड्रोजन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन को वर्चुअल माध्यम से संबोधित किया। जलवायु परिवर्तन तथा ऊर्जा रूपांतरण को वैश्विक मुद्दा बताया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में नर्सों को राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार से सम्मानित किया। नागर विमानन मंत्रालय का दूसरा एशिया प्रशांत मंत्रिस्तरीय सम्मेलन आज नई दिल्ली में शुरू होगा। और चीन के ओलन ब्योर में पुरुष एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी टूर्नामेंट में आज भारत का मुकाबला मलेशिया से। दोपहर समाचार के साथ मैं निखिल कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि ये सिलिकॉन कूटनीति का युग है और भारत सेमीकंडक्टर पावरहाउस बनने के लिए हर कदम उठाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार देश में चिप उत्पादन की संख्या बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित कर रही है, ताकि हर डिवाइस को भारत में निर्मित चिप से लैस किया जा सके। प्रधानमंत्री ने आज ग्रेटर नोएडा में सेमीकॉन इंडिया 2024 का उद्घाटन किया।
भारत चिप का एक बहुत बड़ा कंज्यूमर है। इसी चिप पर हमें दुनिया का सबसे बेहतरीन डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड किया है। भारत का यूपीआई हो, रुपे कार्ड हो, भारत के लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन गए।
प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन के दौरान देश में इलेक्ट्रॉनिक्स और सेमीकंडक्टर उद्योग को बढ़ावा देने के लिए की गई विभिन्न गतिविधियों पर प्रकाश डाला।
भारत में सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी लगाने के लिए 50% सपोर्ट भारत सरकार दे रही है। भारत की नीतियों के कारण ही बहुत कम समय में 1.5 ट्रिलियन रूपीज से ज्यादा के इन्वेस्टमेंट इस क्षेत्र में भारत में हो चुके हैं।
प्रधानमंत्री मोदी ने डिजिटल इंडिया पहल की सफलता पर भी प्रकाश डालते हुए कहा कि देश इसके गुणक प्रभाव देख रहा है। उन्होंने कहा कि पहले देश मोबाइल फोन का आयात करता था, लेकिन अब ये मोबाइल फोन का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक बन चुका है।
डिजिटल इंडिया की सफलता के लिए हमें अफोर्डेबल मोबाइल हैंडसेट्स और डेटा की जरूरत थी। इसके लिए हमने जरूरी रिफॉर्म्स और जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया। एक दशक पहले हम मोबाइल फोन के बड़े इंपोर्टर्स में से एक थे। आज हम दुनिया के नंबर 2 प्रोड्यूसर्स और एक्सपोर्टर हैं।
इस अवसर पर इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि सरकार ने डिजिटल इंडिया और दूरसंचार मिशन के माध्यम से नागरिकों के हाथों में प्रौद्योगिकी पहुंचाई है। उन्होंने कहा कि देश में सेमीकंडक्टर उद्योग का विकास इस दृष्टिकोण को और मजबूत करेगा।
All the initiatives taken so far, whether it is Digital India Mission, the Telecom Mission, everything has brought technology in the hands of common citizens. The growth of semiconductor industry in our country will further deepen this vision.
इस सम्मेलन में 250 से अधिक प्रदर्शक और 150 वक्ता भाग ले रहे हैं। 3 दिवसीय इस कार्यक्रम का विषय है, सेमीकंडक्टर के भविष्य को आकार देना। इस सम्मेलन का उद्देश्य भारत की सेमीकंडक्टर रणनीति और योजना का प्रदर्शन करने के साथ ही देश को सेमीकंडक्टर के एक वैश्विक केंद्र के रूप में स्थापित करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि जलवायु परिवर्तन तथा ऊर्जा रूपांतरण वैश्विक चिंताएं हैं और हरित हाइड्रोजन को बढ़ावा देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी महत्वपूर्ण है। ग्रीन हाइड्रोजन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन को वर्चुअली संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि आपसी सहयोग से उत्पादन बढ़ाने, लागत कम करने और बुनियादी ढांचे के निर्माण में तेजी से प्रगति की जा सकती है। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये महसूस किया जाने लगा है, जलवायु परिवर्तन केवल भविष्य का मामला नहीं है, बल्कि इसका प्रभाव इस समय भी देखा जा रहा है।
देयर इज ए ग्रोइंग रियलाइजेशन दैट क्लाइमेट चेंज इज नॉट जस्ट ए मैटर ऑफ द फ्यूचर। द इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज इज बीइंग फेल्ट हियर एंड नाउ। द टाइम फॉर एक्शन इज ऑल्सो हियर एंड नाउ।
श्री मोदी ने कहा कि नवीकरणीय ऊर्जा और स्थिरता वैश्विक नीति के निर्माण के लिए हो रहे विचार विमर्श का केंद्र बन चुके हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि हरित ऊर्जा पर अपनी पेरिस प्रतिबद्धताओं को पूरा करने वाले G20 देशों में भारत पहला राष्ट्र है। उन्होंने बताया कि ये प्रतिबद्धताएं 2030 के लक्ष्य से 9 साल पहले ही पूरी कर ली गई हैं।
वी वेयर द फर्स्ट अमंग G20 नेशंस टू फुलफिल आवर पेरिस कमिटमेंट्स ऑन ग्रीन एनर्जी। These commitments were fulfilled 9 years ahead of the target of 2030.
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में नर्सों को राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया। राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार की स्थापना वर्ष 1973 में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा की गई थी। ये पुरस्कार नर्सों और नर्सिंग पेशेवरों द्वारा समाज को प्रदान की गई सराहनीय सेवाओं के लिए दिया जाता है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। नागर विमानन मंत्रालय का दूसरा एशिया प्रशांत मंत्रिस्तरीय सम्मेलन आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में शुरू होगा। 2 दिन के इस कार्यक्रम का आयोजन अंतर्राष्ट्रीय नागर विमानन संगठन और नागर विमानन मंत्रालय के सहयोग से किया जा रहा है। भारत इस समय घरेलू क्षेत्र में सबसे तेजी से बढ़ता हुआ दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा विमानन बाजार है। भारत में विमानों की संख्या पिछले दशक की तुलना में 400 से बढ़कर 800 और हवाई अड्डों की संख्या तेजी से 74 से बढ़कर 157 हो गई है। उड़े देश का आम नागरिक उड़ान जैसी सरकार की पहल ने दूर दराज के इलाकों में भी विमान सेवाओं का विस्तार किया है। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए प्रचार शुरू हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 14 सितंबर को डोडा में रैली करेंगे। हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के भी डोडा में एक रैली को संबोधित करने का कार्यक्रम है। प्रधानमंत्री मोदी और राहुल गांधी के अलावा कांग्रेस पार्टी के एक अन्य स्टार प्रचारक इमरान प्रतापगढ़ी 13 सितंबर को चरवा कहरा में एक रैली करेंगे, जबकि नेशनल कॉन्फ्रेंस के स्टार प्रचारक उमर अब्दुल्ला 12 सितंबर को डोडा जिले में कुछ रैलियों को संबोधित करेंगे। हरियाणा के विधानसभा चुनावों के लिए राज्य में 90 सीटों वाली विधानसभा के लिए सदस्यों का चुनाव करने के लिए 5 अक्टूबर को मतदान होगा। नामांकन दाखिल करने की आखिरी तारीख कल है। जांच 13 सितंबर को होगी। उम्मीदवार 16 सितंबर तक अपना नामांकन वापस ले सकते हैं। वहीं वोटों की गिनती 8 अक्टूबर को होगी। एक रिपोर्ट।
हरियाणा में आगामी विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने में अब केवल एक दिन बचा है। ऐसे में सभी राजनीतिक पार्टियों के वरिष्ठ नेता आज अपना नामांकन दाखिल कर रहे हैं। इनमें प्रमुख नाम पूर्व गृह मंत्री अनिल विज, हरियाणा विधानसभा के स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता, डिप्टी स्पीकर रणबीर गंगवा, कृषि मंत्री कृष्ण पाल गुर्जर, वित्त मंत्री जेपी दलाल और वरिष्ठ भाजपा नेता ओपी धनखड़ शामिल हैं। कांग्रेस नेता और हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा और मशहूर ओलंपियन विनेश फोगाट और विजेंद्र सिंह अपना नामांकन आज दाखिल करेंगे। आम आदमी पार्टी के नेता अनुराग ढांडा भी आज अपना नामांकन दाखिल करेंगे। जननायक जनता पार्टी ने आजाद समाज पार्टी के साथ गठबंधन करके 18 उम्मीदवारों की तीसरी सूची जारी की है। आम आदमी पार्टी ने भी 11 उम्मीदवारों की सूची जारी की है। आकांक्षा सक्सेना, आकाशवाणी समाचार, चंडीगढ़।
केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री राजीव रंजन सिंह ने आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सह योजना शुरू की है। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना की चौथी वर्षगांठ पर सभा को संबोधित करते हुए श्री रंजन ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से एक साथ आने की अपील की और मत्स्य पालन क्षेत्र को एक संगठित क्षेत्र बनाने के लिए अधिक से अधिक मछुआरों को इस डिजिटल प्लेटफॉर्म से जुड़ने के लिए कहा। संसदीय कार्यमंत्री किरेन रिजिजू ने आज नई दिल्ली में मंत्रालय की 100 दिन की उपलब्धियों के रूप में 6 गतिविधियों का शुभारंभ किया। उन्होंने राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन 2.0 अधीनस्थ विधान प्रबंधन प्रणाली, परामर्शदात्री समिति प्रबंधन प्रणाली, राष्ट्रीय युवा सांसद योजना 2.0 और एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय पहल का शुभारंभ किया। इन पहलों का उद्देश्य कागज रहित विधायी वातावरण प्राप्त करना, वास्तविक समय पर शासन को बढ़ावा देना और बेहतर निर्णय लेने की ओर ले जाना है। जम्मू कश्मीर में आज तड़के सीमा पर संघर्ष विराम समझौते का उल्लंघन करते हुए पाकिस्तानी सैनिकों ने भारतीय चौकियों पर अकारण गोलीबारी की। गोलीबारी में सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ का एक जवान घायल हो गया है। बीएसएफ के जवानों ने भी जवाबी कार्रवाई की, लेकिन पाकिस्तान की ओर से हताहतों की संख्या के बारे में अभी पता नहीं चला है। गुजरात के कच्छ में अबदासा और लखपत क्षेत्रों में पिछले एक सप्ताह के दौरान अज्ञात कारणों से हुए बुखार से 11 लोगों की मौत हो चुकी है। राज्य सरकार ने बुखार पीड़ितों के लिए चिकित्सा सुविधाओं के व्यापक प्रबंध किए हैं।
आरोग्य विभाग ने पूरा सेंसिटिव जोन जो ये हमें लग रहा है वहां पर ये 7 गांव और 7 गांव के रेडियस के अंदर 10 किलोमीटर त्रिज्या में आने वाले सभी गांव पर आरबीएस की टीम 108 का डेप्यूटेशन एक्स्ट्रा मेडिकल टीम ये सब का कुल मिला के कॉम्प्रिहेंसिवली ये सारवार के लिए पूरा कार्यक्रम तय भी कर लिया है।
राज्य के स्वास्थ्य मंत्री ऋषिकेश पटेल ने ये जानकारी दी। स्वास्थ्य मंत्री, राज्य सरकार के मंत्री प्रफुल्ल पंशेरिया और अन्य उच्चाधिकारियों का आज प्रभावित क्षेत्रों में दौरे का कार्यक्रम है। मौसम विभाग ने राजस्थान, मध्य प्रदेश, विदर्भ, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में मूसलाधार बारिश की संभावना व्यक्त की है। विभाग ने अगले 6 दिन तक असम, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश में बहुत तेज बारिश होने का अनुमान व्यक्त किया है। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और बिहार में भी 14 सितंबर तक इसी तरह का मौसम रहने की संभावना है। विभाग ने 14 से 16 सितंबर तक छत्तीसगढ़ में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। महाराष्ट्र में गणपति उत्सव और गौरी पूजन श्रद्धा तथा उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। ऐसा माना जाता है कि देवी गौरी, जिन्हें पार्वती के नाम से भी जाना जाता है, भगवान गणेश से मिलने के लिए घरों में जाती हैं। ये दिन विवाहित महिलाओं के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण होता है, जो गौरी पूजन मनाने के लिए अपने मायके लौटती हैं। एक रिपोर्ट।
महाराष्ट्र में विविध परंपराओं के अनुसार छोटे पत्थर, खड़ी मूर्तियां या मुखौटों के रूप में गौरी की पूजा की जाती है। घर आई गौरी की मेहमान नवाजी करने के लिए पूजा की सामग्री, फूल, फल, सब्जियां, मिठाई खरीदने वाले लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी है। इस मौके पर विवाहित महिलाएं पारंपरिक पकवान तैयार कर गौरी को भोग चढ़ा रही है। कल गौरी को भावपूर्णता के साथ विदा किया जाएगा। अंकिता आप्टे, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। चीन के उलनबियोर में एशियाई हॉकी चैंपियनशिप में आज मौजूदा चैंपियन भारत अपने तीसरे लीग मैच में मलेशिया के साथ खेल रहा है। भारत 6 अंकों के साथ तालिका में शीर्ष पर है। टूर्नामेंट में शीर्ष 4 टीमें सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करेंगी। श्रीलंका में राष्ट्रपति चुनाव के लिए पिछले सप्ताह निर्धारित दिनों पर जो सरकारी कर्मचारी डाक से अपना वोट नहीं डाल पाए थे, उन्हें आज और कल अपना वोट डालने की अनुमति दी जाएगी। राष्ट्रीय चुनाव आयोग ने कहा है कि यदि अधिकारी इन 2 दिनों के भीतर अपना वोट नहीं डालते हैं तो वे अपने मताधिकार का इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर अपमानजनक टिप्पणी करने वाले मालदीव के 2 मंत्रियों ने त्याग पत्र दे दिया है। स्थानीय खबरों के अनुसार मरियम शियोना और मालशा शरीफ ने निजी कारणों का हवाला देते हुए त्याग पत्र दिया है। शिवना, मालशा और अब्दुल महजूम माजिद को इस साल की शुरुआत में सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय लोगों के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करने के लिए निलंबित कर दिया गया था। श्रीलंका ने 1 अरब श्रीलंकाई रुपए के साथ एक वित्तीय स्थिरता कोष स्थापित करने का निर्णय लिया है। सरकारी सूचना विभाग के अनुसार यह धनराशि वहां के वित्त आर्थिक स्थिरीकरण और राष्ट्रीय नीति मंत्रालय द्वारा प्रदान की जाएगी। वित्तीय संस्थानों को संकट से उबारने के लिए सेंट्रल बैंक ऑफ श्रीलंका ने बैंकों को मजबूत करने को प्राथमिकता दी है। वियतनाम में प्रचंड तूफान यागी और बाढ़ तथा भूस्खलन के कारण आज देश के उत्तरी क्षेत्र में मरने वालों की संख्या बढ़कर 141 हो गई है, जबकि 59 लोग लापता बताए जा रहे हैं। वियतनाम के राष्ट्रीय जल मौसम पूर्वानुमान केंद्र के अनुसार राजधानी हनोई में लाल नदी पर बाढ़ का स्तर 3 स्तरों में से चेतावनी स्तर 2 को पार कर गया है और आज दोपहर तक उच्चतम स्तर तक पहुंचने का अनुमान है। केंद्र ने थाव नदी पर अत्यधिक उच्च जल स्तर और कई अन्य पर तेजी से बढ़ती बाढ़ के बारे में भी चेतावनी जारी की है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्रेटर नोएडा में सेमिकॉन इंडिया 2024 का उद्घाटन किया। कहा, भारत सेमीकंडक्टर पावर हाउस बनने के लिए हर कदम उठाएगा। प्रधानमंत्री ने हरित हाइड्रोजन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन को वर्चुअल माध्यम से संबोधित किया। जलवायु परिवर्तन तथा ऊर्जा रूपांतरण को वैश्विक मुद्दा बताया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में नर्सों को राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार से सम्मानित किया। नागर विमानन मंत्रालय का दूसरा एशिया प्रशांत मंत्रिस्तरीय सम्मेलन आज नई दिल्ली में शुरू होगा और चीन के उलनब्यूर में पुरुष एशियाई हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी टूर्नामेंट में भारत का मुकाबला मलेशिया से जारी है। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।